मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल में सयानी पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि हम सभी लोग इस बात पर विचार कर रहे थे कि भक्ति के माध्यम से भी हम अपने संसार को घटा सकते हैं और संसार से पार हो सकते हैं। बादीराज महाराज ने जैसी भक्ति करी, धर्म पर आने वाली विपत्ति और संकट, और इतना ही नहीं, उनके अपने जीवन में आने वाले सांसारिक दुख और कर्मों के बंधन, इन सब से वे मुक्त हुए। और भी बहुत सी भक्तियां अपन पढ़ते हैं जिनमें यही बात बार बार आती है कि हम बहुत सारी संसार की विपत्ति और संकटों से, यहां तक कि संसार से भी बच सकते हैं यदि हम श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करें। भक्ति हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए निमित्त बन सकती है। कैसे बन सकती है? क्या होता है जीवन में, जब किसी के बहुत सुख आ जावे तो फिर भक्ति नहीं होती है, और दूसरा या तो बहुत दुख आ जावे तो भक्ति नहीं होती है। दोनों स्थितियां हैं, लेकिन वास्तव में सुख और दुख दोनों स्थितियों में जो भगवान की भक्ति में हमेशा लगा रहता है वो संसार से पार होने का उपाय अपने आप कर लेता है। हम लोग दुख में भक्ति को भूल जाते हैं। बादीराज महाराज ने दुख की स्थिति में भी भक्ति करी, और इस बात की हमें प्रेरणा मिलती है कि दुख आने पर भी हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को नहीं छोड़ें। अक्सर होता है, हम सतना में थे तो वहां पर एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि महाराज 20 बरस से मैं रोज पूजा करता हूं भगवान की, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां इतनी हैं, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। एक तरह का शिकायत से भरा हुआ मन था कि इतनी भक्ति करी हमने और हमें समृद्धि नहीं मिली। तब फिर इस तरह की भक्ति से वास्तव में हमारे जीवन में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हम कोई ना कोई अपेक्षा रखते हैं। भक्ति के साथ अपेक्षा शोभा नहीं देती। अगर भक्ति के साथ अपेक्षा है तो इतनी ही होनी चाहिए कि मेरा अपना कल्याण हो, मुझे कोई सांसारिक उपलब्धि हो। इस तरह की कामना यदि हम करते हैं तो वो सांसारिक इच्छा पूरी हो जावे तब भी हमें भक्ति का महत्व समझ में नहीं आता, और अगर वो सांसारिक इच्छा पूरी ना हो तब तो फिर भक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा ही हम श्रद्धान कर लेते हैं। दोनों स्थितियों एक जीवन में सबसे बड़ा मैसेज वादिराज महाराज भक्ति के माध्यम से ये भी देते हैं, प्रागेवेह त्रिदेव भवना देशता भव्य पुण्यान पृथ्वी चक्रम कनक मयताम देव निन्ने त्वेदम ध्यान द्वारम मम रुचिकरम स्वांत गेहम प्रविष्टा तत्किम चित्रम जिन बपुरिदम यत सुवर्णी करोषि। ऐसी भक्ति करके यदि मेरे देह सोने की हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है, उसमें कोई बहुत वैशिष्ट भी नहीं है, भगवान से ऐसा कह रहे हैं, वो तो हो ही जाएगी, सो डेफिनेट। अब देखना, स्वर्ण के समान उनकी देह हो भी गई लेकिन एक उंगली में थोड़ा सा कोड़ बाकी रह गया। एक तरफ बंधक है, सेठ है जो कि महाराज की वंदना कर रहा है, महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है, उसका भी हित चाह रहे हैं। सोने की देह हो जाएगी तो इसका हित हो जाएगा क्योंकि ये राजा के यहां कह के आया है कि हमारे तो महाराज की देह सोने के समान उज्जवल होती, आप कहां कह रहे हैं कि कोड़ से युक्त होती है। तो भगवान से एक तरफ प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो हो ही जाएगी सोने के समान, क्योंकि जब आप पृथ्वी पर आए नहीं थे तब आपके आने से पहले ही सारी पृथ्वी देवों के द्वारा स्वर्णमय हो गई थी, तो आप तो मेरे ध्यान के द्वार से मेरे हृदय में आकर के बैठोगे और मुझे पूरा स्पर्श करोगे तो मेरी देह तो सोने की हो ही जाएगी। पर वो थोड़ी सी उंगली में कोड़ बाकी रह जाए, इसका मतलब जो निंदक है उसका भी अहित ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान है। जो प्रशंसक है उसका तो हित दुनिया चाहती है और जो निंदा कर रहा है उसके प्रति भी दयालुता देखो आप, कि जब राजा आएंगे और जो निंदा करने वाला है वो तो देख करके दंग रह जाएगा कि हमने तो कहा था कोड़ होता है इनको और इनकी तो देह सोने की है, तो उनकी रक्षा के लिए बताने के लिए कि नहीं, इन्होंने जो कहा था ठीक कहा था, वो तो मेरे कर्म के उदय से कोड़ हुआ था और आज कर्म का क्षय हो जाने से और देह सोने की हो गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफ निंदक के अहित से बचाने का प्रयास और जिसने वंदना की है प्रशंसा की है उसका भी हित हो, धर्म की प्रभावना हो, ये दृष्टिकोण हमारा क्या भक्ति का हो सकता है? सबका भला हो इस दृष्टि से अगर भक्ति करें तो भी भक्ति कर सकते हैं। मेरा तो हो गई, जब सबका होगा तो बिना अपेक्षा के भक्ति नहीं होती, लेकिन हम सांसारिक अपेक्षा न रखकर अपने और पर के कल्याण की भावना से भक्ति रखकर लेवे तो उसमें क्या हर्ज है? और दुख में भी हम अपनी भक्ति को विस्मृत ना करें, दुख आ जाने पर हम विचलित ना हो जावें और अपनी भक्ति निरंतर करते रहें। सबका भला कैसे होता है? अगर थोड़ा सा अपन मन बना लेवे इस चीज का, अपन को तो जो अपने मन का होता है वो ही भला जान पड़ता है, पर अपन कहां जानते हैं कि मन का नहीं होने पर भी कई चीजें ऐसी होती जो हमारे भले की होती है, ये बड़ा मुश्किल है। क्या हुआ, एक घटना है इसकी। एक राजा का मंत्री था तो वो हर एक बात में राजा से कहता था कि जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो राजा को बड़ा अजीब लगता था कि ठीक है, कभी एक आध बार मौका आएगा तो देखेंगे। एक बार क्या हुआ कि कोई चाकू वगैरह से और तलवार से और राजा की उंगली कट गई, तो मंत्री की तरफ देखा तो मंत्री ने कहा कि भले के लिए ही है वो तो बड़ा गुस्सा आया राजा को कि इधर तो उंगली कट गई, उंगली कटने में कौन सा भला हो रहा है, भले के लिए उंगली कट गई। बहुत गुस्से में आकर के और कहा कि मंत्री को बंद कर दो, जेल में बंद कर। मंत्री को जेल में बंद कर दिया। हमेशा मंत्री साथ में रहता था राजा के, जब भी राजा कहीं भी जाते थे, और उस दिन अब मंत्री को तो जेल में बंद कर दिया और राजा चले वन में वन विहार करने के लिए और वहां पर रास्ता वास्ता भटक गए और भीलों ने उनको पकड़ लिया। दो चार लोग उनके साथ थे, उतना सामर्थ्य नहीं रही उतनी, सैनिक सब पीछे छूट गए। पकड़ लिया तो वहां पर कोई देवी देवता के लिए और बलि देने के लिए ले गए। राजा को इतने सुंदर हैं, इनकी अच्छी रहेगी, प्रसन्न होंगे। ऐसे लोग भी ऐसी भक्ति करते हैं, देखो तो दूसरे के प्राण संकट में डाल करके कोई देवी देवता प्रसन्न हो तो ऐसा वो देवी देवता कहलाएगा क्या? है? देवत्व तो प्राणी मात्र के कल्याण में है, जो प्राणी मात्र का कल्याण चाहे वो देवता है, और जो दूसरे का कल्याण चाहे उसको क्या कहेंगे। लेकिन वो ले गए पर जैसे ही तैयारी हुई तो देखा कि उंगली तो कटी हुई है, और कटी हुई है तो खंडित हो गया, अब ये काम का नहीं है, भगा दिया। अब राजा के समझ में आई कि मंत्री जी कहते थे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, देखो आज उंगली कटी नहीं होती तो हम तो गए थे, हमारे तो प्राण चले जाते। फौरन पहले नंबर आ करके और मंत्री को मुक्त कर दिया, क्षमा करता हूं, पर एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं। मेरी उंगली कटने से तुमने कहा था कि भला हुआ, सो तो मैंने आज देख लिया कि मेरा भला हुआ, लेकिन तुम्हें जेल में बंद किया इसमें तुम्हारा कौन सा भला हुआ? अब तो प्रश्न तो था। तो मंत्री भी कम नहीं था, उसने कहा सुनो राजन, अच्छा हुआ कि आपने मुझे जेल में बंद कर दिया, अगर मैं आपके साथ होता तो आप तो बच जाते, मैं तो मर ही जाता। देखो घटना है, अपन एक बार अपने मन में ऐसी बात धारण कर लेवे, इतनी समता अपने मन में आ जावे, अपन सोचते ये हैं कि हमारे मन का हुआ तो अच्छा हुआ और हमारे मन का नहीं हुआ तो बुरा हुआ। अरे भैया, अच्छे और बुरे को हम क्या डिसाइड कर सकते हैं? आने वाले समयों में क्या हम ये निर्णय कर सकते हैं कि क्या हितकारी है क्या अहितकारी है? इसलिए जब भी हम भक्ति करें तो ये नहीं सोचें कि मेरे मन का हो जाएगा तो भक्ति करूंगा, और मेरे मन का नहीं होगा तो भक्ति में छोड़ दूंगा भगवान की। ऐसा भाव मन में नहीं ला करके निरंतर सुख और दुख में, देखो बहुत मैंने बड़े बड़े महापुरुष भी हैं, उन पर भी विपत्ति आई है, उन पर भी संकट आए हैं, लेकिन संकट आने पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति को नहीं छोड़ा, वो ही उनकी मुक्ति का कारण बना। इसलिए भक्ति में ये भी जरूरी है कि हम सदा सुख और दुख दोनों में समान भाव से भक्ति करते रहें। दूसरी चीज, भक्ति हमें धैर्य देती है, भक्ति हमें सहन शक्ति देती है, हमें सहन करने की सामर्थ्य आ जाती, क्योंकि भक्ति के क्षणों में और हम ये महसूस करते हैं कि कोई हमारे साथ है, और अगर हमें एक कोई सहारा मिल जाए तो फिर हम आसानी से अपने दुखों को सहन कर लेते हैं। दुख तो सब पर आते हैं, लेकिन हम उन दुखों के क्षणों में क्या चाहते हैं कि कोई इतने ही तो पूछ लेवे कि भैया कोई चीज की जरूरत तो नहीं है, हम तो हैं तुम्हारे लिए। अब दुख तो अपना झेलेगा व्यक्ति अकेले अकेले, लेकिन उसे लगता है कि कोई और भी है जिसकी मदद से मैं अपने इस दुख की स्थिति से पार हो जाऊंगा। वो वैसी ही स्थिति हमारे साथ भक्ति के समय बनती है, जिस समय हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, उस समय कहां कौन सा संकट आया, कौन सी विपत्ति आई, सब कुछ भूल जाते हैं, भूल जाना चाहिए। उतनी देर के लिए जितनी देर को हम भगवान के चरणों में बैठ के भक्ति कर रहे हैं, होंगे बहुत दुख संसार के, लेकिन इस समय तो कुछ नहीं, इस समय तो मैं आनंदित हूं, मुझे सौभाग्य मिला है भगवान की भक्ति करने का। ऐसा जो है अपन कृतज्ञता से भर करके भगवान की भक्ति करें और भगवान को अपने साथ महसूस करें, उनकी प्रेजेंस फील करना। जैसी भगवान की वीतरागता है सो मेरी है, यही तो प्रेजेंस फील करना है उनकी। अपनी वीतरागता का स्मरण करना या भगवान की वीतरागता का स्मरण करना, यही उनकी प्रेजेंस फील करना है, उनकी उपस्थिति महसूस करना। राग द्वेष मेरा विकारी भाव है, लेकिन मेरा स्वभाव तो मेरे साथ है, वो कहीं गया थोड़ी है। कितनी विपत्ति आ जावे, कैसा भी हो जावे, लेकिन मेरे अपने स्वभाव को तो मैं हमेशा अपने पास ही है, उसे कहीं मैं खोनी, कोई मेरा ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। ऐसी हमारे अंदर प्रेजेंस की फीलिंग होनी चाहिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी घटना इसके साथ भी है, आज तो छोटी छोटी सी बात कहूंगा, थोड़ा कंसंट्रेशन भी गड़बड़ा गया है और थोड़ा गला भी गड़बड़ा रहा है, पर ठीक है, दुख में और छोड़ नहीं देना चाहिए, है ना, यही तो मैसेज है, और तो कोई चीज है नहीं कि बस थोड़ी सी विपत्ति आई बैठ गए हाथ पे हाथ रख करके कुछ भी नहीं करो। अकंठोत्स कुंठो मम, सुबह तो यही कह रहा था मैं कि मुश्किल है कि आज कर पाऊंगा, फिर मैंने कहा वहां पहुंच जाऊंगा देख लूंगा, अगर नहीं बोलते बनेगा तो नहीं बोलूंगा, और बोलते बन जाएगा तो बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बन रहा है कोई। और दुनिया भर की बातें तो करेंगे, अभी दुनिया भर के काम करेंगे, और भोजन करने तो जाएंगे, उसके लिए तो नहीं कुछ भी मना करें, और इसके लिए मना ही हो गई कि भाई ये अपने को नहीं जमा, आज तक नहीं जमा, वर्षों हो गए मुझे हमेशा ये लगता कि और सब काम तो रुके नहीं, अकेला बस ये रोक दो धर्म ध्यान पर, क्योंकि तब ये ठीक नहीं है। अपन के आदत में है ये, अपन सोचते हैं कि ऐसा करके और अपन दूसरे के प्रति और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि देखो अब तब ये ठीक नहीं है तुमने करो। वर्णी जी के जीवन की घटना है, 105 बुखार है, और दोपहर में चार आदमी बचन का को पहुंच जाते, उनने 400 और 4000 की कहूं चिंता नहीं करी जी, हमने बहुत लोगों से सुना वर्णी जी के, चार लोग पहुंच जाते तो फिर बंद न बचन का खो सो बैठ गए और चार लोगों को सुना गई। अब एक दिन जो है बड़ा बुखार, 105 बुखार, ये चार लोग देखने पहुंचे थे, मना करने पहुंचे थे कि आज ने पढ़े हैं हम वचन का, आज आपको स्वास्थ्य जी अच्छो नहीं है, तो पर वर्णी जी कहने वो उठाओ चदरा उठाओ, छुलक थे तो चदरा उठाओ, कहने लगे काय के लिए, चलो कनक अपन वचन का करेंगे, कहते हमें नहीं सुनने आज वचन का, आज तब ये ठीक नहीं है आपकी। तो मालूम क्या जवाब दिया था, ए भैया तुमने हमारे मोक्ष मार्ग के लिए हमारे हाथ पर दो ग्रास रखे हैं, हमारा फर्ज है कि दिन भर में दो बातें हम तुम्हें मोक्ष मार्ग की जरूर सुनाएंगे, चाहे हमारा प्राण अभी निकलता हो तो निकल जावे, धर्म के लिए कभी भी, इसलिए भक्ति इत्यादि दुख के समय पर हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। अब भगवान की प्रेजेंस कैसे फील करें, इसके लिए अपन उदाहरण देख रहे थे, शायद पहले सुना चुका हूं या नहीं भी, अपन फिर से रिवाइज कर ले। एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो अब जंगल में तो बड़ा भय रहता है शेर वेर आ जाए, तो संध्या का समय हो गया, उन्होंने कहा चलो सामायिक कर लो, बैठे दोनों जन सामायिक में। अब शिष्य का काय को मन लगे, उसको जो डर लग रहा था, नया नया था, सब तरफ चौकन्ना होकर देख रहा था, उसने में दहाड़ सुनाई पड़ी शेर की, छोड़ी ओड़ी सामायिक आमायिक सब पूजा पाठ भक्ति, चढ़ गया वो पेड़ के ऊपर, गुरु जी को छोड़ दिया उसने, बैठे रहा आप अकेले, हम नहीं जानते, अपन तो विपत्ति में भगवान को छोड़ देते भैया, विपत्ति से सुरक्षा करने के लिए अपन अपने हाथ से उपाय करने लगते हैं, उस समय समता भाव नहीं धारण कर पाते हैं। अब क्या हुआ, शेर आया, बाबा जी तो अपने ध्यान में लीन थे गुरु जी, शेर ने सूंघा, सब तरफ से घूम घाम करके वापस चला गया। अब तो शिष्य बड़ा चकित कि गुरु जी बिल्कुल महिमावान है, इसमें कोई शक नहीं, बड़े चमत्कारी मालूम पड़ रहे हैं, शेर आया कुछ भी नहीं किया, और अब तो बहुत श्रद्धा उसकी, उतरा जब नीचे तो चरणों में लेट गया, गुरुजी ने कहा चलो चलो, चले रास्ते में, और थोड़ी दूर गए थे, और उतने में गुरुजी को किसी एक बड़े से कीड़े ने और काट लिया। अब तो गुरुजी बड़े तिलमिला गए, कराहने लगे, अब शिष्य बड़े पशुपेश में कि अभी जब शेर आया था तब तो ऐसे बिल्कुल बैठे थे, और अब इतने जरा से कीड़े ने उसने मच्छर ने काट दिया, तो ऐसी हाय तोबा मचा ली इन्होंने, तो गुरु जी से कहा कि आपने जब इतनी बड़ी विपत्ति सहन कर ली और इतनी छोटी सी में आप इतने विचलित हो गए, कह ले सुनो उस समय तो मेरे साथ भगवान था, इस समय तो तुम हो हमारे संग, जब मैं ध्यान में था तब तो मेरे साथ भगवान था, इसलिए सहन हो गया, अब तो तुम मेरे साथ। भगवान की प्रेजेंस, देखो सांसारिक चीजों से हम अपनी सुरक्षा खोजते हैं, सांसारिक चीजों में सुरक्षा नहीं मिलेगी, जो संसार से पार हो गए सुरक्षा तो उन्हीं के चरणों में मिलेगी, कहने का आशय ये है। और हम उस समय स सब छोड़ देते हैं, जिसने संसार छोड़ दिया उसके चरणों की शरण ले ले तो सांसारिक विपत्तियां अपने आप दूर हट जाती, जबकि हम दुनिया में अपनी विपत्ति से बचने का उपाय ढूंढते हैं कि इनसे जाके रिक्वेस्ट करो, उनसे जाके रिक्वेस्ट करो, वे जाके हमारा कुछ दुख दूर कर देंगे। अरे तीनों लोकों के नाथ के चरणों में आकर के और यदि हम अपनी विनती करें, दुख दूर करने की विनती नहीं करना कभी, हाँ ऐसा कि हमारे जी दुख दूर हो जाए, संकट दूर हो जाए, नहीं भगवान इन दुखों को मैं समता पूर्वक सहन कर सकूं ऐसी सामर्थ्य देना, क्योंकि दुख तो मैं झेल करके ही काट पाऊंगा, ऐसे नहीं कटेंगे दुख, क्योंकि मैंने ही अपने किसी खोटे कर्म से अपने लिए दुख का उपाय किया है। अब आपसे क्या हम कहें कि आप हमारे दुखों काट दो, कर्म तो हम ही काटेंगे अपने खोटे, पर आप हमें शक्ति देना हम विचलित ना हो जाए। बस इतनी चीज अगर हम भक्ति के समय और सीख ले तो ये महत्वपूर्ण है, भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए। एक और इसका उदाहरण है, पंडित कैलाश चंद जी हुए हैं बनारस में, बहुत बड़े पंडित जी माने गए, तो उनके जीवन की घटना है, लोग बताते हैं जो विद्यार्थी उनसे पढ़े वो छात्रावास में रहते थे, तो कहते कि जब पंडित जी को बहुत तकलीफ होती थी, बुखार आ जाता था, तब भी वे शाम की सामायिक नहीं छोड़ते थे, दोपहर की नहीं छोड़ते थे, सुबह की नहीं छोड़ते थे, शाम की सामायिक में समय पर वे उठ करके, कितने ही बुखार है फिर भी बच्चों से कहेंगे कि हमें ले चलो भगवान के वहां सामने बिठा दो, शेष नाम का पाठ करना, भक्तांबर का पाठ करना, स्वयंभू स्त्रोत्र का पाठ करना और सामायिक करना, ये रोज का नियम था, कितनी ही स्थिति कैसे ही भी हो जाए। तो बच्चे बताते हैं कि एक बार 105 बुखार था उनको और जिद करके कपड़े उड़ा करके उनको ले गए, टिक करके खंबे से बैठ गए भगवान के सामने, बच्चे लोगों ने सोचा कि देखें ये क्या करते हैं क्या पढ़ते हैं, और पीछे खंबे के खड़े हो गए बच्चे लोग, और पंडित जी ने अपनी शुरू करी, तो अब बन तो है ही नहीं रहा था, शरीर सारा कांप रहा है और बुखार इतना तेज है, तब मालूम बच्चों ने बताया बाद में कि क्या कहते भगवान के सामने कि अब जब बिगड़ गई तबीयत, न हमसे सामायिक ठीक से हो पा रही, न आपकी भक्ति हो पा रही, अगर सामायिक और भक्ति अच्छे से करवाने हो तो ठीक हो जाए, हमें और किसी चीज के लिए ठीक होना नहीं है, हमें तो आपकी भक्ति ठीक से कर सकें, हमारी तो सामायिक अच्छे से हो जाए, हम इतने ही चाहते और किसी चीज की आवश्यक, और कहते हैं कि बस इतना कह के भगवान के सामने और स्वयंभू स्तोत्र और सहस्रनाम स्तोत्र सारे पढ़ते, सामायिक में लीन होते, बाद में घंटे भर बाद जब बच्चे उनको लेकर के आते तो बुखार कहाँ चला गया, 105 से 100 कब हो गया, बताओ कौन ने कर दिया, कोई जादू हो गया क्या, अरे परिणाम निर्मल हो गए, परिणाम निर्मल हो गए तो कर्म कट गए, जो असाता कर्म का उदय था उसमें कमी आ गई, संक्लेश करते तो और असाता बंधती और विशुद्धि बढ़ा ली तो असाता कर्म कट गए। भगवान के चरणों में भक्ति करने से अपनी विशुद्धि बढ़ती है और विशुद्धि जितनी बढ़ जाए, पुनः तु चित्तम दुरितान जनेभ्या, हे भगवान आप तो वीतरागी हो, मैं हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर कछु हमें देवारे आओ, और हम आपकी स्तुति कल से बंद कर देवे, सो नाराज होकर हमसे कछु हमारा अहित नहीं करोगे आप, ऐसे परम वीतरागी हो आप, लेकिन क्या करें हम आपकी भक्ति करके अपना चित्त निर्मल बना लेते हैं, आपकी भक्ति हमारे चित्त को निर्मल करती, इसलिए हम आपकी भक्ति करते हैं, और चित्त जिसका निर्मल है उसके सारे काम अत्यंत आसान हो जाते हैं। लोकस सैकस तमसि भगवन निर्निमित्तेन बंधु त्वये वासौ सकल विषया शक्तिर प्रत्यनीका भक्तिस्फीताम चिरमधिवसन मामिकाम चित्त सय्याम मयुत्पन्नम कथमेव ततः क्लेश यूथम सहे था। क्या कह रहे हैं, लोकस सैकस तमसि भगवन निर्निमित तेन बंधु, इस लोक में एकमात्र अत्यंत अद्वितीय सब जीवों का निस्वार्थ भाव से भला चाहने वाले आप हो, बताइए, और सकल विषया अप्रतिनिका शक्ति अपि, और सारे पदार्थों को एक साथ युगपत जानने की सामर्थ्य आपके भीतर है, इतने तो शक्तिशाली हो कि सबकी सब बात जानते हो, और दयालु इतने हो कि कोई स्वार्थ नहीं हो, सबका भला करते हो, ये दो विशेषताएं आपकी हैं, अत्यंत दयालु हो और अत्यंत ज्ञानवान हो, राई रत्ती सब जानते हो, और अब मेरे मन रूपी सैया पर मैंने अपनी श्रद्धा भक्ति से आपको बुला के बिठा लिया है, आप दयालु हो और सब जानते हो। देखना, अब हमें अगर कोई दुख है तो क्या वो आपसे छिपा है? और आपको मालूम पड़ जाएगा, और आप दयालु हो सो उसको दूर किए बिना रहोगे नहीं। हमने आपसे नहीं कहा कि दूर करो, लेकिन आप मेरे हृदय में आ जाओगे तो मेरा दुख सहन कर ही नहीं पाओगे, और नहीं सहन कर पाओगे सो अपने आप दूर कर दोगे। भक्ति का ढंग देखो, तीनों लोकों में एकमात्र आप हो जो सब जीवों का भला चाहते हो, और उनसे कोई कुछ नहीं आपको अपेक्षा है, और सबके बारे में सब जानते हो। ऐसे आपको मैंने अपने हृदय में विराजमान अगर कर लिया है तो आप मेरे दुखों को सहन नहीं कर पाएंगे, अर्थात मेरे दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। आपको हृदय में धारण करने से मेरा चित्त इतना निर्मल हो जाएगा कि सारे दुख अपने आप नष्ट हो जाएंगे। भाई भक्ति तो ऐसी ही है, हमारे जीवन में हमें इस भक्ति के द्वारा भी और कुछ बने चाहे नहीं बने, बहुत ज्ञान न हुए और ज्यादा व्रत नियम भी न पालन कर पा रहे हो, नहीं है सामर्थ्य भाई, तो कम से कम इतनी तो है कि घंटे भर सुबह शाम और बैठ करके और भगवान के स्वरूप पर विचार करें, अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करें, भगवान की भक्ति में लीन हो करके अपने चित्त को निर्मल बनाएं, तो भी अपना काम हो सकता है। इसी भावना के साथ कि अपन अपने जीवन को अच्छा बनाएं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
जय। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है,
प्रक्रिया है जिसमें बहुत इंडल्स होकर के बहुत राग द्वेष से युक्त होकर के, बहुत तनावग्रस्त होकर के, बहुत चिंतित होकर के, मन को मलिन करके और हम कर्म कर रहे हैं, आगे के लिए हमारा संचय भी उतना ही अधिक हो रहा है। और इतना ही नहीं, जो कर्म पहले बांधे थे वे हटे तो बिल्कुल नहीं, बल्कि वे हमारे साथ और अधिक प्रगाढ़ रूप से और अधिक डॉमिनेट होकर के हमारे साथ बाइंडअप हो गए। कितनी सीधी सी चीज है अगर हम समझना चाहें तो, हम उतना ध्यान अपने कर्मों पर न दें जो शरीर से किए जाने वाले हैं, उससे ज्यादा हम ध्यान दें जो हम निरंतर अपने मन में विचार करते हैं, और उन विचारों से प्रेरित होकर हम जो वाणी बोलते हैं, उन विचारों से प्रेरित होकर हम जो शरीर से क्रियाएं करते हैं। वाणी और शरीर से होने वाली क्रियाएं हमारे अपने मन से रेगुलेट होती हैं, तो हम क्यों ना अपने मन को ठीक ठीक संभालें। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। आचार्य भगवंतों ने बहुत संक्षेप में बंध और मोक्ष की प्रक्रिया लिख दी। आज अपन इस कर्म बंध की प्रक्रिया का उपसंहार करने जा रहे हैं। रत्तो बंध विकम्मो मुंचद जीवो विराग संपन्नो एसो जिनो विदेशो तन्हा कम्मी सुमारज्य। एक गाथा में आचार्य कुंड कुंड स्वामी के चरणों में बैठे तो वे कहते हैं कि रत्तो बंध विकम्मो मुंचद जीवो विराग संपन्नो। यहां राग और द्वेष हमारे बंधन का कारण है, हम स्वयं अपने राग द्वेष से बंधक है। कोई हमें यहां बंधन में डाल रहे हैं ऐसा नहीं है, लगता तो यही है कि जैसे किसी ने हमें इस संसार में, संसार के बंधनों में डाल दिया हो, मजबूर कर दिया हो। अगर ऐसा कुछ होता तो हम तो जाकर के उस व्यक्ति के पास में दया की भीख मांग लेते कि भैया बात दें हो गए, अब तो छोड़ो। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ही छूटना चाहें तो क्षण भर में छूट सकते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी आदत जगह जगह बंधने की हो गई है, कोई हमें बांधता नहीं है। हमारी आदत स्वयं बंधने की हो गई, हम अपने शरीर से बंधे हुए हैं, हम अपने विचारों से बंधे हुए हैं, अपनी भावनाओं से बंधे हुए हैं, हम अपने परिवार, अपने प्रांत, अपनी भाषा, अपनी जाति, अपने देश, पता नहीं किन किन चीजों से हम बंधे हुए हैं, हमने अपने आप को इन चीजों से बांध दिया है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि कमिट करो किसी भी चीज के लिए, तय करो। हम इसी तरह तो अपना बंधन स्वयं अपने हाथ से बांधते हैं। कमिट करना क्या चीज है, बाइंडअप होना है, एक बंधन है, लेकिन वो बंधन बड़ा सुखद मालूम पड़ता है, तय कर लेना सुखद मालूम पड़ता है। महाराज आप तो कह दो क्या करोगे, शाम को क्या करोगे, कल क्या करोगे, आप तो 4 महीने तक का हिसाब बता दो आगे तक का। हम लोगों को इस तरह के बंधन में रुचि है, हम प्रतिक्षण उन्मुक्त होकर के सहज भाव से जीना पसंद नहीं करते। हम आगे तक का हिसाब बना के फिर उसके बाद वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं, और सारा झगड़ा संसार का इतना ही है। जो वीतरागी हैं वे इस तरह के किसी भी बंधन में पड़ना स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वे सबके बीच रह करके भी उससे मुक्त हो जाते हैं। रत्तो वंदी कम मुंचरी ही वो विराग संपन्न। इसी संसार में रहकर के कोई मुक्त भी हो सकता है क्या? हाँ, मुक्त भी हो सकता है। अरंत भगवान शरीर में रहकर के भी शरीर से मुक्त है, जन्म मरण से मुक्त हो गए और उसी संसार के बीच है। हमने उनको एक समोशरण के बीच बिठा रखा है, लेकिन वे समोशरण के बीच गंध कुटी में भी सिंहासन और कमल कमल से भी चार अंगुल ऊपर अलिप्त सबसे स्पष्ट दिखाई पड़ते। वो इस बात का नासिक देते हैं कि हमेशा इन चीजों से इनके बीच रह करके भी अलिप्त होने की कोई विद्या सीख लो। चीजें सब ज्यों की त्यों हैं, लेकिन हमारी अलिप्तता उनके पास बनी रहे तो फिर चीजें हमें बंधन में नहीं डालती हैं, हम स्वयं बंधन स्वीकार कर लेते हैं। आचार्य महाराज से जब भी कोई पूछता है, अक्सर लोग पूजा करते हैं, वो बड़े मजे के जवाब देते हैं आचार्य से। तो किसी ने कहा कि महाराज हम तो बड़े परेशान हैं हमारी आदत से। अच्छा क्या हुआ? तो महाराज जो सिगरेट की आदत हमारी पड़ गई है वो छूटती नहीं है। क्या करें महाराज, कुछ उपाय बताओ। तो आचार्य ने क्या जवाब दिया? अरे कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कठिन काम थोड़ी है, आप ऐसा कर दिया करें दोनों उंगलियों को ऐसे जोड़ा मत करें, दोनों उंगलियों को ऐसे खाली छोड़ दिया करें, देखें क्या होता है। मतलब क्या है? सिर्फ इशारा है इस बात का, हमारी मुट्ठी कैसे खुले, हमारे बंधन से हम मुक्त कैसे हों, ये पूछने पर मुट्ठी बांधते क्यों नहीं हम, वो तो खुली हुई है। बंधन हम स्वयं अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, मुक्ति हमारा स्वभाव है, बंधन हमारा स्वभाव नहीं है। और जिस दिन हम जो है और बंधन छोड़ दे दें अपने हाथ से, तो मुक्त तो हम हैं। मुक्ति का कोई अतिरिक्त उपाय करने की हमें आवश्यकता नहीं है। वो जो बंधन का हम अतिरिक्त उपाय करते हैं, उस बंधन के उपाय को हम अगर छोड़ दे दें तो कोई हमें यहां पर बंधन में डाल नहीं सकता। और बंधन का उपाय एक ही है, राग और द्वेष। तन्हा कर्मे सुमारज्य, इसलिए कर्म में रचो पचो मत। कर्म तो करो लेकिन कर्म में रचो पचो मत, उसके फल में भी आशक्त मत हो। बताइए कितनी आसानी से हमें कर्म करने और ऐसे कर्म करने जिससे कि बंधे हुए कर्मों को काटा जा सके, उसकी सलाह दे रहे हैं। सब तो ये कहेंगे कि कर्म मत करो, नहीं कर्म करो। कर्म किए बिना कर्म के बंधन से मुक्त कैसे होगे? एक कर्म वो है जिसके करने से हम और अधिक कर्म के बंधन में पड़ जाते हैं, और एक कर्म वो है जिसके करने से हम अभी तक के सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म तो दोनों है। सामान्य रूप से जब हम सुनते हैं कि कर्म, तो ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ बंधे हुए हैं, जो हमें बांध लेते हैं, वो कर्म है। नहीं, वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा भी एक कर्म है, स्वाध्याय करते हैं वो भी एक कर्म है, मुनिजनों की सेवा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, ये भी एक कर्म है। ये सारे आध्यात्मिक कर्म हैं, और हम इन आध्यात्मिक कर्मों को करके अपने सांसारिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं, इतना सीधा सा उपाय है। लेकिन क्या करें, हमारे अपने जो हमने पहले कर्म किए हैं उनका दबाव हमारे ऊपर इतना है कि वर्तमान के हमारे कर्म जो कि सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, दोनों में बहुत मुश्किलें और बहुत बाधाएं आती हैं। पहले जरा सी इस चीज को समझ दें एक छोटे से उदाहरण से कि कैसे हम अपने हाथ से कर्म के बंधन से बंध जाते हैं और कैसे हम चाहें तो मुक्त हो सकते हैं। मैंने शायद ये उदाहरण पहले भी सुनाया है, पर अपन एक बार उसको रिवाइज कर रहे हैं कि एक छोटा सा बेटा पहुंचा था साधु बाबा के पास में कि महाराज यहाँ इस संसार में जो है वो बंधन कैसे होता है और कैसे हम मुक्त हो सकते हैं संसार से। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारे पास रहो, हम बता देंगे, तुम जाओ पहले एक दिन हमारा काम करो। वो जो सामने पेड़ लगा है, उस पेड़ को तुम जितना तकलीफ दे सको उतनी तकलीफ दो, तोड़ो उसको, पत्थर फेंको, उसके फल सब तहस नहस कर दो, जितना तुमसे बने उसका अहित उतना करो। उसने कहा ये कौन सा काम सौंप रहे हैं, जाओ तो देखो कैसा लगता है। उससे जितना बना उसने दिमाग किया उसका, वापिस लौटा, पूछा कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मन बहुत भारी है। सुबह उठा, ढंग से नींद नहीं आई, ये लगता रहा कि कौन सा दूसरे दिन गुरु जी ने पूछा कि रात नींद आई? बिल्कुल नींद आई, बहुत दुख होता रहा, आपने ऐसा काम क्यों मुझे करने को कहा? अरे तो जाओ, फिर अब जाओ और जाकर के उससे क्षमा मांगो, क्षमा मांगो कि कल मैंने जो तुम्हारा बिगाड़ किया था वो मेरी गलती हो गई, और जरा उसको पानी दो, पत्नी को संभालो, उधर जो कचरा फैल रहा है उस सबको हटाओ, लग जा लो काम में, माफी मांगी पेड़ से जाकर, वो फिर पेड़ के पास जाकर के पत्ते सब ठीक ठाक किए, फल जो टूट गए थे उनको भी दुरुस्त किया, पानी सींचा, बड़ा मन गदगद हो गया। शाम को लौटा, गुरु जी ने कहा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तो ये जो कर्म तुमने कर्म किया था उससे थोड़ी सी राहत मिली, बहुत राहत मिली। कल तो मन बिल्कुल ही नहीं शांत था, बड़ा अशांत था, लेकिन आज जब मैंने वृक्ष के प्रति ऐसा व्यवहार किया तो मुझे लगा कि वृक्ष ने मुझे माफ कर दिया होगा, कल के मेरे कर्म को वृक्ष ने माफ कर दिया होगा, कल के मेरे कर्म से मैं आज का कर्म करके ऐसा लगता है जैसे मुक्त हो गया हूं, कल के मेरे अपराध से आज मुझे मुक्ति लग रही है। बताइएगा, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, क्या ये उपाय नहीं अपने बंधन और मुक्ति का? जिस कर्म के करने से हमारे ऊपर जैसे छाती पर किसी ने पत्थर रख दिया हो, सारा दिन व्यथित होता है, वे सारे कर्म हमारे संसार बढ़ाने वाले हैं और वे सब सांसारिक हैं, और जिनमें हमारा मन प्रफुल्लित होता है, जिनके करने से मन हल्का हो जाता है, वे कर्म हमारे उन कर्मों को काटने वाले हैं, अभी उनसे मुक्ति दिलाने वाले हैं, लेकिन संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं, हमारे पाप से मुक्ति दिलाने वाले हमारे सत्कर्म हैं, लेकिन संसार से मुक्ति तब होगी जब सद और असद दोनों कर्मों के बीच में समता भाव होगा, तब मुक्ति होगी। और वो सीखना हो तो वृक्ष से सीख लें, पहले दिन जब चोट पहुंचाई थी तब भी वैसे ही खड़ा था, दूसरे दिन जब क्षमा मांगी तब भी उतनी अलिप्त खड़ा हुआ है, क्या ऐसा ही हम अपने जीवन में किसी क्षण कर सकते हैं? तीनों चीजें हमारे सामने हैं, हम कर्म अशुभ करते हैं, उनका दबाव हमारे ऊपर होता है, तब हम उस दबाव को कम करने के लिए शुभ कर्म करें, और कुछ क्षण ऐसे भी हों जब हम शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से विश्राम लेकर के, राग द्वेष से विश्राम लेकर के शांत भाव से अपना जीवन व्यतीत करें। उपाय सिर्फ इतना ही है, हमारे सांसारिक कामों में बाधा आती है, हमारे आध्यात्मिक कामों में बाधा आती है, कौन डालता होगा ये बात? हम चाहते हैं कि जाकर के, और आज तो साधु जनों की, मुनि जनों की सेवा करें, लोगों को दान दें, जो दीनहीन हैं, गरीब हैं, उनकी मदद करें, ऐसा मन में भाव होता है, लेकिन ऐसा भाव होने के बाद भी, सारे सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल हो जाने के बाद भी पता नहीं क्या होता है और मैं दान नहीं दे पाता। मैं सोचता हूं कि फलानी चीज मुझे मिल जावे, मैं उसके लिए सारा प्रयत्न करता हूं, और अंतिम क्षण में जाकर के वो चीज मिलते मिलते और मेरे हाथ से फिसल जाती है, मेरे अपने भोग उपभोग की सामग्री के साथ भी ऐसा ही है, मैं बहुत प्रयत्न करके खाने की थाली सामने सजा के रख लेता हूं, और मुंह में जो बहुत दिन से प्रतीक्षित था मेरे लिए प्रिय रसगुल्ला, वो हाथ में और मुंह में आने आने को था, और उतने में ही मोबाइल पर घंटी बज गई, और एक ऐसी खबर जिसने कि उस रसगुल्ले को मुझे वहीं के वहीं रखने को मजबूर कर दिया, और उठ करके मुझे उस काम के लिए जाना पड़ा। ये मेरे भोग की सामग्री में बाधा किसने डाल दी? मेरे उपभोग की सामग्री में बाधा कौन डालता है? मैं बहुत उत्साहित होकर के किसी धर्म के कार्य को करने के लिए निकलता हूं, और बीच रास्ते में मुझे कोई ऐसी चीज घेर लेती है कि मैं उससे विमुख होकर के वापस फिर लौट जाता हूं, सारा उत्साह खत्म हो जाता है, मैं निरुत्साहित हो जाता हूं। ऐसा कौन सा मेरे भीतर ऐसा कौन सा परिणाम या मेरे भीतर ऐसा कौन सा कर्म पड़ा हुआ है जो मेरी इन सब चीजों में बाधा डालता है। होगा तो कोई ना कोई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विघ्न कारणम अंतरायस्य, आचार्य भगवंतों का एक ही सूत्र है, सारे कर्मों में जैसे मोहिनी कर्म अत्यंत प्रबल है, ऐसे ही सबसे छिपा हुआ और अचानक हमारे सामने आने वाला कर्म अंतराय कर्म है। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस्य विहीन। अरि के मायने शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु मोहिनी कर्म, और धूल के समान हमारे ज्ञान दर्शन को आवृत करने वाला रज अर्थात धूल, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, और रहस्य मिस्ट्री जिसको कहते हैं, कब आएगा पता नहीं, रहस्य है, उसे कहते अंतराय। अंतराय अत्यंत रहस्यमय है। हम सारी इंतजाम कर लेते हैं और अचानक ऑल ऑफ सडन जिसको कहते हैं, हमारे हमें कहने को मजबूर होना पड़ता है कि इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद, मेरी सारी तैयारियों के बावजूद सब धरा रह गया वहीं के वहीं, करो क्या करते, और कहीं से पता नहीं लगता, थोड़ा इंडिकेशन हो जाता कि ऐसा होने वाला है, नहीं असाता के उदय में तो थोड़ा सा पता लगता है कि बस अब असाता आने वाली है, लेकिन अंतराय के उदय में पता नहीं लगता है कि कब क्या स्थिति बनेगी। और वो कर्म भी हमने अपने लिए स्वयं बांधा है, और बांधते कैसे हैं ये देख ले हम, तब फिर वो उदय में आकर के अपना फल देता है ये तो दिखाई पड़ता है, लेकिन कब बन जाता है ये दिखाई नहीं पड़ता, और कब फल देगा ये भी दिखाई नहीं पड़ता, जब फल दे चुकता है तब दिखाई पड़ता है। क्या अरे ये कितनी बार हमारे जीवन में हम ये अनुभव करते हैं, कितनी बार इस चीज को हमने अपने जीवन में स्वयं झांक करके देखा है कि कितना मन होता है कि दान दे दे, चार पैसे हाथ में भी हैं लेकिन इतने जल्दी मन बदल जाता है, देने का मन जितनी देर से होता है नहीं देने का उतने जल्दी हो जाता है। धर्म करने का उत्साह जितनी मुश्किल से होता है निरुत्साहित हम उतनी जल्दी हो जाते हैं। जरा सा किसी ने कह दी श्रद्धा बड़ी मुश्किल से जमती है, और किसी ने जरा सी बात कह दी श्रद्धा एक मिनट में, हाँ ठीक जी, क्या चीज है ये अंतराय कर्म है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ये हमें दुख दे रहा है अंतराय कर्म, तो वो हमारे अपने कौन से परिणाम होंगे जिससे कि हमारे साथ ये बन गया है, तब हम आसानी से उन परिणामों से वर्तमान में बच करके आगे के लिए अपने अंतराय को टाल सकते हैं। महाराज कुछ उपाय बताओ, कोनो मंत्र दे दो, बड़ी मुश्किल है, आर्थिक रूप से बिल्कुल मुश्किल में है, दुकान ठीक से नहीं चलती है, जहां हाथ लगाओ वहीं पर जो है बिगाड़ होता है, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं, लेकिन 2 जून का भोजन बामुश्किल मिल रहा है, आप कुछ बताओ तो। भैया किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है, न कोई इसके लिए कुछ मदद कर सकता है, अगर कोई मदद कर सकता है, कोई उपाय हो सकता है, तो अपने परिणामों को हम संभाल लेवे तो हमारे अंतराय कर्म आसानी से दूर हो सकते हैं। जब सांसारिक चीजों में बाधा आती है तब भी आध्यात्मिक कर्म करने की सलाह दी गई, और जब आध्यात्मिक कर्म करने में बाधा आती है तब और अधिक आध्यात्मिक कर्म करने की सलाह दी गई। आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो तो दुकान पर हर 1 मिनट के अंदर सामान लेने उठाने धरने के लिए सैकड़ों बार उठता है एक व्यक्ति, और अगर उससे कहा जाए कि खड़े होकर पूजा करो तो कहते जोड़ों में दर्द होता है। बाहिए अच्छे से बैठ करके जाप दे लो कितनी वो दर्द होता बहुत, हम 5 मिनट ज्यादा बैठ नहीं सकते हैं। अच्छा और वहां दुकान पर इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि मैंने ऐसा खोटा कर्म बांध लिया है जो मुझे संसार बढ़ाने में तो बाधा नहीं डालता, मेरे संसार को घटाने वाले कार्यों में बाधा डालता है। वो मुझे सलाह देता है भीतर बैठा बैठा, इसमें आनंद है, दूसरी इतनी चीज नहीं है। वो कर्म ही सब कुछ करता है ऐसा नहीं, हमारे वर्तमान का इंटरेस्ट भी उसके साथ है। जैसा हमने अपना स्वभाव बना लिया होगा वर्तमान में, जिस चीज में हमें रुचि आती होगी वो चीज आसानी से हम कर पाएंगे, बाकी चीजों में मुश्किलें खड़ी होंगी। ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं समझना कि मुश्किलें सब हमारे पुराने कर्मों से ही खड़ी होती, अपने वर्तमान के कर्मों से भी हम अपने जीवन में मुश्किलें खड़ी करते हैं, ऐसा नहीं समझना। हम लापरवाही करें और कर्म को दोष दे दें कि क्या करें, हमें बाधा पड़ रही है। अब अपन खुद ही प्रयत्न नहीं करें, कर्म के बारे में तो तब कहा जाएगा जबकि सारे प्रयत्न करने के बाद, सारी सिचुएशन फेवरेबल होने के बाद फिर काम बिगड़ जाता है, तब फिर मानना पड़ेगा कि कोई ऐसा कर्म मेरे साथ जुड़ा हुआ है जो मुझे बाधा डाल रहा है। आज तक मुक्ति दिलाने वाला कोई कर्म नहीं हुआ है, कोई कर्म 148 कर्म प्रकृतियों में जिसके उदय में मुक्ति हो जाए है? किसी ने पढ़ा हो तो बताएं, कर्मकांड पढ़ने वाले तो बहुत होंगे लोग, क्या 148 कर्म प्रकृतियों में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसके उदय में मुक्ति हो जाए? तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी हो तब भी बैठेगा सबको उपदेश दे, अब मुक्त नहीं हो सकते जब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय है। हाँ, कोई भी कर्म का उदय मुक्ति नहीं दिलाता, मुक्ति में बाधा जरूर डालता है कर्म का उदय। हम ये सोचें कि हमारी मुक्ति में कोई कर्म का उदय आएगा, नहीं, मुक्ति हमारी हमारे पुरुषार्थ से होगी, पुरुषार्थ में बाधा डाल सकता है कर्म, तब फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जब बाधा डाले कर्म तो मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि उस बाधा को मैं दूर कर सकूं, बस इतना ही सा उपाय है। अगर अंतराय कर्म मेरे कामों में बाधा डालता है तो फिर मैं ऐसा काम करूं जिससे कि मेरी वो बाधा दूर हो जाए, मैं ऐसे काम न करूं जिससे कि और अधिक मेरे जीवन में बाधा आ जावे। आचार्य भगवंतों ने इस सूत्र के लिए व्याख्या करते हुए, अकलंक स्वामी ने तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, पूछपाछ स्वामी ने विघ्नकरण मंत्रावश्य कह करके और सूत्र की, उमा स्वामी महाराज के सूत्र की व्याख्या कर दी कि भाई दान आदि जो कार्य हैं उनमें अगर हम दूसरे को बाधा डालते हैं तो हमारे कर्म बंधेगा अंतराय कर्म, और फिर बाद में जब हम दान लाभ भोग उपभोग और वीर इन सब के लिए प्रयत्न करेंगे तो फिर हमारे लिए भी बाधा डलेगी और बात खत्म हो गई। अकलंक स्वामी के चरणों में जाकर के बैठे तो वे विस्तार रुचि शिष्यों के लिए समझाते हैं, क्योंकि अलग अलग आचार्यों का अपना अलग अलग अप्रोच रहा। जो सूत्र में सारी बात समझ लेते हैं उमा स्वामी महाराज ने उनको सूत्र में कह दी, थोड़ी सी व्याख्या में जो समझ लेते हैं पूजपाद स्वामी ने उनको थोड़ी सी व्याख्या करा दी, और जो और डिटेल चाहते हैं उनको बैठना पड़ेगा अकलंक स्वामी के चरणों में। अपन भूल ही गए हैं अपने आचार्य भगवंतों के नाम, हमें याद करना चाहिए, इनका उपकार हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है। बता रहे हैं कि दान आदि में विघ्न डालने से स्वयं अंतराय बनता है, लेकिन इतना ही नहीं, हमारे आगे भी दान आदि में अंतराय हमें स्वयं उत्पन्न होता है। दूसरे के दान आदि में बाधा डाली है हमने, हम निमुक्त बने हैं उसके अंतराय में, उसके तो किसी कर्म का उदय है, सो हम उसमें निमित्त बन गए, लेकिन हम निमित्त बनकर के अपने आगे के लिए अंतराय बांध लेते हैं। जनरली अपने मन में यही आएगा कि देख भाई मेरा तो देने का बहुत मन था, लेकिन अब उन्हीं के कर्म ही को उदय है, सब जी अपने कर्म को उदय, वो नहीं हमारी क्या गलती है उसकी, यही आएगा ना मन में। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, उसके तो कर्म के उदय में आपके देने पर भी उसको लाभ नहीं हो पा रहा, लेकिन आप उसको नहीं देने का जो विचार कर रहे हैं, उसके उस दान इत्यादि में बाधक बन रहे हैं, वो आपको भी इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करेगा। ये दोनों चीजें एक साथ चलती, कदम कदम पर हम लोग दूसरे के दान लाभ भोग उपभोग और वीर में बाधक बनते हैं, कदम कदम पर। संसार में मैं आज विचार कर रहा था कि शायद हम लोग अंतराय कर्म सबसे ज्यादा बांधते होंगे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था। कदम कदम पर अपने मन की करवाना दूसरे के लिए बाधा ही है। हाँ, अगर विचार करें ऐसा करो ऐसा नहीं करो, अरे वो कैसा करना चाह रहा है आपको क्या मालूम, कि किसी के भी भले बुरे में बीच में निमित्त बनने मत, चुप रहो जितना हो सके, नहीं तो संसार ही बढ़ेगा। यहां तो सुबह से शाम तक गृहस्थी में इनको जा सलाह दे इनको बा सलाह दे, तुम जो करो तुम जो न करो, ये अंतराय अपने लिए बढ़ेगा। बहुत सूक्ष्म है मामला। अगर संसार से मुक्त होना है तो इसीलिए जितना कम हो सके संसार के प्रपंच में पढ़ना चाहिए। अपने को सुबह सुबह यही समझ में आया जब मैं विचार कर रहा था इन चीजों का, क्योंकि आपके मन में तो बहुत बहुत प्रैक्टिकली नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बेटा जा रहा है कहीं, कहां जा रहा हो, कोई जरूरत नहीं है, हो गया, अंतराय आपने बांध लिया। भले वो बुरा करने जा रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कभी सोचना। भोग उपभोग में भी बाधा नहीं डालना, भोग उपभोग में सोचो आप अब क्या करें, तो फिर कहते आप जिम्मेदारी दूसरे की काय को ले रहे हैं, आप काय को मुश्किल में पड़ रहे हैं, उसको जैसा करना करने दें। एक पंडित हीरालाल जी थे कर्मकांड के बड़े विद्वान, उनने अपने बेटे को जगाना छोड़ दिया था, कहते मैं काय को बेकार में दर्शनावरणी कर्म का बंद करूं, तुम्हें सोना से तुम जानो तुम्हारा काम, जाने जब उठना हो तो उठना, अरे तो दूसरे का आहित कर ले हो जाएगा अगर वो 10 बजे तक सोता रहेगा, तो कहते हम अपना आहित क्यों करें उसको जगा करके। हाँ, अगर वो मेरे से कहे कि मुझे जगा ले।